सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायां नमो लोये सौवसाहूणं जेणिह कसाय पाहुण मणेयणयमुज्ज्वलम् अनन्तत्थं गाहा हि विवरियं तं गुणहर भणारयं वंदे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की हुई है। ये जो द्वितीय पुस्तक, उसमें द्वितीय अर्थाधिकार प्रकृति विभक्ति, उसमें मूल प्रकृति विभक्ति की बात चल रही है अपनी। अब हम पृष्ठ संख्या 49 पर आ गए, 49। ये मार्गणाओं में हमने भागा भाग की बात देखी थी, उसमें अनंत बहुभाग और अनंतवा भाग, असंख्यात बहुभाग और असंख्यातवा भाग, संख्यात बहुभाग और संख्यातवा भाग तो देख ही लिया था, परंतु जहां उल्टा प्रोपोर्शन होता है अनंत बहुभाग अविभक्ति में, मोहनीय की अविभक्ति अनंतों में और अनंत विभाग में, ऐसा भी वहां हमने देखा था ना, या संख्यात भाग या संख्यातवा भाग इस तरह से हमने देखा था। तो यथाख्यात संयतों में हमने देखा था कि संख्यात बहुभाग तो अविभक्ति वाले हैं और संख्यातवा भाग विभक्ति वाले, क्योंकि यथाख्यात में 11वें को ही अकेला विभक्ति वालों में रखना था। अपगत वेदियों में हमने देखा था, अपगत वेदियों में क्या प्रोपोर्शन है, अनंत अनंत वा भाग और अनंत बहुभाग, ये अपगत वेदियों में देखे हमने। वैसे अकषायों में भी समझना चाहिए, ये बात हमने कल देखे थे। अब यहाँ हमारा नया अनुयोग द्वार चालू हो जाता है, परिमाणानुगम। तो परिमाणानुगम की अपेक्षा 49 पृष्ठ पर चल रही बात, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें ओघ की अपेक्षा मोहनीय के विभक्ति वाले जीव और मोहनीय अविभक्ति वाले जीव कितने हैं, पहले तो कितने भाग प्रमाण है पूछा था, उनकी संख्या कितनी वो नहीं बताया था, तो प्रमाण जो है उसमें वो कितने हैं वो बता रहे हैं, तो कहते अनंत है, यानी विभक्ति वाले भी अनंत है अविभक्ति वाले भी अनंत है। परंतु उसका जब भागा भाग पूछा था तो अविभक्ति वाले जो अनंत है वो अनंतवा भाग है और विभक्ति वाला जो अनंत है वो अनंत बहुभाग है। भागा भाग में तो हमने बहुभाग और एक भाग ऐसा देखा था, तो उनकी संख्या कितनी है, दोनों की अपना अपना अलग अलग अनंत है, वो अनंत अनंत गुणा बड़ा है। इसी प्रकार अनाहारक जीवों के भी कथन करना चाहिए। अनाहारक जो है, सिद्धों में अनाहारक आ गए ना सारे, और अनाहारक विभक्ति वाले वो अन्य जो सारे कहां पर हो गए अनाहारक विभक्ति वाले, हाँ विग्रह गति में, हाँ विग्रह गति में पहला है, दूसरा है, चौथा है, अनाहारक अनाहारक विभक्ति वाले। और अनाहारक अविभक्ति वालों में 13वें का संयोग वो समुदात वाले भी लेना, अयोगी भी लेना और सिद्ध भी लेना विशेषार्थ। 12वें गुणस्थान के पहले जितने भी संसारी जीव हैं, वे सब मोहनीय कर्म से युक्त है, और 12वें गुणस्थान से लेकर सभी जीव मोहनीय कर्म से रहित है, उसको अविभक्ति कहा था और सहित वालों को विभक्ति कहा था। इन दोनों राशियों का प्रमाण अनंत है, अतः ऊपर मोहनीय विभक्ति वाले जीव और मोहनीय अविभक्ति वाले जीव अनंत कहे गए हैं। अनाहारकों में विग्रह गति को प्राप्त हुए जीव मोहनीय कर्म से युक्त होते हैं और प्रतर तथा लोकपूर्ण समुद्घात गत संयोग केवली अयोग केवली तथा सिद्ध जीव मोहनीय से रहित होते, जो अनाहारक होते हुए मोहनीय से रहित है। ये दोनों ही अनाहारक राशियां अनंत है, इसलिए ऊपर मोहनीय कर्म से युक्त और मोहनीय कर्म से रहित अनाहारक जीवों का कथन ओघ प्ररूपणा के समान है। ओघ प्ररूपणा क्या है? अनंत है, इतनी ही ये सामान्य कथन है। अब आदेश से ने अलग अलग मार्गणाओं में अभी विशेषता से बताएंगे कहां कितना प्रमाण है। तो नरक गति में विभक्ति वाले है क्या अविभक्ति वाले है? सभी विभक्ति वाले है। तो कितने हैं? असंख्या। और प्रत्येक नरक में भी असंख्यात है। आदेश से नरक गति में नारकियों में मोहनीय विभक्ति वाले जीव कितने हैं? असंख्यात है। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में कथन करना चाहिए तथा अभी यही कथन कौन सा असंख्यात है ऐसा कथन कहाँ कहाँ होगा? तो कहते सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच सभी पंचेंद्रिय नहीं लिए। सभी पंचेंद्रिय लेते तो क्या होता? वो अविभक्ति वाले भी हो जाते उसमें। तो सभी के सभी असंख्यात है ये जो कथन है ना, क्या कहते हैं? मोहनीय विभक्ति वाले जीव तिर्यंचों में केवल विभक्ति वाले ही हो गए, अविभक्ति वाले हो गए क्या? नहीं हो गए, नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच लिए। जैसे नारकियों में कथन किया है कि सभी जो है वो कितने हैं? तो असंख्यात है। पंचेंद्रिय तिर्यंच मनुष्य लब्धि अपर्याप्त वो भी असंख्यात है। सामान्य देवों की अपेक्षा कहेंगे सभी मिलकर भी असंख्यात है और अलग अलग कहे तो भी असंख्यात है, एक्सेप्ट वन, कौन से? सर्वार सिद्धि वाले हैं, वो संख्यात है। भवनवासियों से लेकर अपराजित स्वर्ग तक के देव, देखो यहां लिख दिया सर्वार सिद्धि को छोड़कर बाकी सभी, यानी अपने अपने स्वर्गों के अलग अलग भी गिनेंगे तो असंख्यात होते हैं। सभी विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त त्रस लब्धि अपर्याप्त पृथ्वी कायिक एक निगोद राशि को अगर छोड़ेंगे तो सभी राशियां असंख्यात है। तो पृथ्वी कायिक अपकायिक तेजस कायिक यानी वो सामान्य पृथ्वी कायिक में भी असंख्यात है और पर्याप्त अपर्याप्त भेद करेंगे तो ही अपने अपने असंख्यात है, सूक्ष्म बादर भेद करेंगे तो भी असंख्यात है। यहां तो सामान्य से लिख दिया उन्होंने, वो आगे लिखेंगे बादर करके। पृथ्वी कायिक अपकायिक तेजस कायिक वायु कायिक किसको छोड़ा यहां पर? वनस्पति कायिक अकेले कहेंगे तो अनंत कहना पड़ेगा क्योंकि उसमें वो निगोद भी है और प्रत्येक शरीर भी है। बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त अलग अलग गिनेंगे तो भी अपने अपने उसके असंख्यात संख्या है। बादर अपकायिक पर्याप्त और बादर अपर्याप्त और अपर्याप्त बादर तेजस कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त यानी उसके भेद नहीं करेंगे तो भी असंख्यात कहेंगे, भेद करेंगे तो ही वो अपना अपना प्रमाण उनका असंख्यात है। बादर वायु कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त। अब बादरों की बात की, अब सूक्ष्म जीव कितने हैं? तो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म तेजस कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त। अब वनस्पति कायिकों में किसको लेना? अकेला वनस्पति कायिक नहीं कह सकते क्योंकि उसमें सामान्य और प्रत्येक दोनों आते हैं, तो यहाँ प्रत्येक को लेना। बादर लेना क्योंकि सूक्ष्म सभी साधारण ही होते हैं, सूक्ष्म वनस्पति कायिक निगोद ही है, सूक्ष्म में प्रत्येक नाम का भेद नहीं पाया जाता इसलिए बादर लिख दिया। बादर वनस्पति कायिक जो है वो प्रत्येक भी होते हैं, साधारण भी होते हैं, यानी जिसको हम बादर निगोद कहते हैं। तो ये बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त। अब बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर, पहले तो प्रत्येक शरीर कहते वो अप्रतिष्ठित कहा या सामान्य से कह दिया कि प्रत्येक शरीर ही, परंतु उसमें प्रत्येक शरीर में भी दो भेद होते हैं। प्रतिष्ठित प्रत्येक जिनके आधार से निगोद रहते हैं वे स्वयं साधारण शरीर ही नहीं है, पर उन प्रत्येक शरीर के आधार से साधारण शरीर वाले जीव रहते हैं। तो उनको कहेंगे बादर, निगोद, प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर। जो हम आलू प्याज आदि देखते हैं वो एक वनस्पति है, वो प्रत्येक है और उसके आधार से वो बादर निगोद रहते हैं। बादर निगोदों को आधार की जरूरत है और सूक्ष्म निगोद पूरे ही लोकाकाश में सभी पांचों सूक्ष्म जीव बिना आधार के रहते हैं। अभी देवलाली में किसी ने प्रश्न पूछा था, तो सूक्ष्म जीवों को शरीर नहीं होता, शरीर का आधार नहीं होता, उनके अपने शरीर आधार की बात नहीं है, उनको अपना शरीर तो है, परंतु जैसे हम कहते आधार से रहते हैं, जैसे पृथ्वी के आधार से, अन्य अभी हम प्राणी भी है, त्रसजीवी रहते हैं, वनस्पतियां भी है, अग्नि भी है, जल भी है, उसको नीचे आधार है पृथ्वी का, ऐसा आधार सूक्ष्म जीवों के लिए जरूरत नहीं है, वो बात है। उनका अपना शरीर तो है जो सूक्ष्म परिणमन वाला जो उन्हें चल रहा है उनका। तो बादर, निगोद, प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, यानी जिन प्रत्येक शरीरों में बादर निगोद जीव रहते हैं, एक एक शरीर में उनके असंख्यात देह होते हैं और एक एक देह में अनंत जीव रहते हैं। अब आगे वैक्रिय काय योगी कितने हैं, तो वो भी असंख्यात है। वैक्रिय मिश्र काय योगी, स्त्रीवेदी, कोमा लगाना, पुरुषवेदी, यानी तीनों ही गतियों के मिलकर स्त्रीवेदी कितने हैं, तो असंख्यात है, अनंत नहीं हो सकते। पुरुषवेदी भी असंख्यात है और नपुसक वेदी कितने हो गए, अनंत है, क्योंकि वो उसमें न एक केंद्रीय न सारे जो निगोद उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। विभंग ज्ञानी, क्योंकि ये भी पंचेंद्रियों में हो गए तो ये भी असंख्यात है। संयता संयत, पंचम गुणस्थानवर्ती भी असंख्यात जीव है। हाँ, कौन से हो गए पांचवें गुणस्थान में असंख्यात, मनुष्य तो संख्यात हो गए, अधिक से अधिक कितने हो गए, अधिक से अधिक मनुष्य असंख्यात, अधिक से अधिक कितने हो गए मनुष्य, किसको याद है, हाँ 13 करोड़ मनुष्यों में संयता संयतों की मैक्सिमम संख्या, उत्कृष्ट संख्या 13 करोड़ है और तिर्यंच तो असंख्यात होते ही है। पंचम गुणस्थानवर्ती कहाँ रहेंगे, यहां भी रहेंगे और वहां भी रहेंगे, कर्म भूमि वाले, क्योंकि भोग भूमि वाले तो चौथा गुणस्थान है। तो भोग भूमि कहां कहां पाई जाती है तिर्यंचों की, आपने जो कहा ना, आपने कहा कि अढ़ाई द्वीप के बाहर, अढ़ाई द्वीप में भी है, क्योंकि हर एक में तो तिर्यंच की अंदर भी है और बाहर भी है, और ढाई द्वीप में जहाँ भोगभूमियाँ हैं, जहाँ मनुष्य भी है और तिर्यंच भी है, और ढाई द्वीप के बाहर जो जितने सारे द्वीप है, स्वयंभूरमण द्वीप के पहले पहले द्वीप का आधा और पहले वाले सारे द्वीपों में जघन्य भोगभूमि है तिर्यंचों की। हाँ, तो वहाँ तो कोई ढाई द्वीप के बाहर तो मनुष्य होते नहीं है, और समुद्रों में भी वहाँ कोई जलचर प्राणी नहीं है, जैसे मत्स्य आदि जो जल में रहने वाले प्राणी वहां नहीं है। अब कोई उठा के कोई टपका दे जल में वो बात नहीं है, परंतु बीच वाले समुद्रों में तिर्यंचों की जघन्य भोग भूमि है, और सारे मरकर कहाँ जाने वाले हैं, हाँ भवनत्रिक में, जो मिथ्या दृष्टि हो गए भवनत्रिक में जाएंगे और समय दृष्टि सौधर्म ईशान में जाएंगे। तो इतने असंख्यात द्वीप है और सब तिर्यंचों का देव में नंबर लगने वाला है। हाँ तो ये संयता संयत जो है वहां के स्वयंभू रमण समुद्र, देखो पूरे असंख्यात द्वीप समुद्र मिलकर जितने हैं ना, तो स्वयंभू रमण समुद्र अकेला बड़ा के बीच वाले सारे मिलकर बड़े, हाँ यानी उसकी जो विड्थ है और अंदर वे सेंटर पॉइंट से लेकर वहां तक के, उससे कितना ज्यादा है, उससे कितना ज्यादा है, मैंने पूछा सेंटर से, सेंटर मेरू पर्वत सेंटर है ना, हाँ मेरू पर्वत से लेकर हाँ ये सारे द्वीप समुद्र असंख्यात है, और लास्ट में वो स्वयंभू रमण समुद्र है। तो स्वयंभू रमण समुद्र एक बाजू ले लो और सेंटर से ले लो, सेंटर से पूरा कितना है, आधा राज्य है। तो स्वयंभू रमण समुद्र जितना है और ये अंदर के सारे ही असंख्या द्वीप समुद्र सब मिलकर जो है, तो उसमें प्रोपोर्शन किसका कितना ज्यादा, किसकी ज्यादा है, तो आपने कही स्वयंभू रमण समुद्र की, तो कितना ज्यादा है, पापा राजू वहां की को, वो कहां पूछा मैंने, वो मैंने नहीं पूछा है, मैंने ऐसा पूछा है। ये पाव राजू ले लो तो ये भी पाव राजू होना चाहिए, नहीं ना बराबर, बराबर नहीं है, वही तो मैं पूछ रही हूँ, वही मेरा प्रश्न है, आप समझे नहीं। अप्रोक्सीमेटली आप बता रहे कि दोनों इक्वल है, पाव पाव राजू कह दे, तो ये पाव राजू में कौन सा बड़ा पाव राजू है, स्वयंभू वाला बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, एट एनी गिवन 1.5 लाख योजन, 1.5 लाख, जैसे अभी सेंटर से जम्बूद्वीप कितना है, एक बाजू कितना है, 50,000 है ना, 1 लाख तो पूरा है, पूरा व्यास, त्रिज्या कितनी है सेंटर पॉइंट से, 50,000, और आगे वाला 2 लाख, कितना ज्यादा है, 1.5 लाख। अभी सेंटर से ये लवण समुद्र को इंक्लूड कर दो तो ये 2 लाख और ये 2.5 लाख हो गया, और आगे वाला कितना है, 4 लाख। आप कहीं भी ले लो, कोई भी समुद्र या द्वीप ले लो, उसके अंदर वाले जो सेंटर से है उससे वो 1.5 लाख ज्यादा होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट, यानी उसकी जो विड्थ है ना उसमें अंदर के तो सब समाज आते ही है, उससे वो उसमें 1.5 लाख ज्यादा रहता है। तो ये कहां से बात आई थी, संहिता संहित कहां है, तो ये स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा हुए, पूरा एक राजू में तो आधा राजू तो वही है, उसमें भी वो यहाँ का और यहाँ का मिलाएंगे 1.5 लाख, तो 3 लाख ज्यादा हो जाएगी योजन, और बाकी सारे असंख्यात बीच में है। असंख्यात की कितनी संख्या मालूम है, सारे द्वीप समुद्रों की संख्या कितनी है, हाँ 25 कोड़ा कोड़ी आगे क्या सागर नहीं, ढाई सागर, ढाई सागर, कौन सा सागर, कौन सा पल्ल्य, बीच वाला उद्धार पल्ल्य, 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ल्य, इतनी उनकी संख्या है, कितनी द्वीप और समुद्रों की, 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ल्यों में जितने रोम खंड हो गए उतने यहाँ तो द्वीप और समुद्र है, रोम रोम, सरसों तो अनावस्था कुंड में थी, पल्ल्यों में रोम खंड गिनते हम, पहला व्यवहार पल्ले में क्या करते हैं वो 1,000 योजन और 1,000 योजन डीप, तो उसमें तो रोम खंडों से भर देते हैं और 100 साल के बाद एक एक निकालते, वो तो संख्या हो जाएगी वर्ष पल्ले, वो व्यवहार पल्ले, अब व्यवहार पल्ले में जितने रोम खंड है एक एक रोम खंड के कितने टुकड़े करना, असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय है उतने रोम खंड एक एक रोम खंड में से बनाने, तो टोटल में से कितने हो जाएंगे, अब उसको गिनो, तो ये तो उद्धार पल्ले हो गए ना, ऐसे उद्धार पल्ले कितने हैं, 25 कोड़ा कोड़ी, इतने द्वीप समुद्र है बीच में, बीच में सभी मिलकर इंक्लूडिंग स्वयंभू रमण समुद्र, हमें तो ये पता ही नहीं ना कितना क्या है, एक राजू में इतना, तो पूरा 343 घन राजू में क्या क्या होगा और कितना बड़ा है ये पूरा क्षेत्र, पल्ल्य मैंने बताया था और उससे द्वीप सागरों की संख्या बताई जो हाँ उद्धार सागरों उद्धार वो अलग नहीं, वो जघन्य परिता संख्यात गिनने के लिए अनवस्था कुंड करते जाओ बड़े 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 और वो भरते जाओ रोमखंड इसमें सरसों से और फिर वो सरसों डालते जाओ तो जहाँ पूरे हो जाएंगे वो लास्ट वाला अनवस्था कुंड जितने सरसों से भर जाएगा वो है जघन्य परिता संख्यात। ये अपना अभी देवलाली में लिया विषय, हाँ डीवीडी बन रही है, अभी चल रहा है प्रयत्न। अभी ये शिविर बहुत अच्छा हुआ, अभी हम खुद क्या कहे, परंतु पूरा विषय कवर हुआ वहां पर, पूरी पुस्तक। संयता संयत की बात चली, फिर तेजोलेशा वाले, ये तेजोलेशा वाले भी, ये सारे तेजोलेशा वाले कहाँ कहाँ है, मनुष्य तो है ही समझो, और कहाँ, ये जो सारे हमने देखे तिर्यंच तेजोलेशा वाले, बीच वाले जो जघन्य भोग भूमि वाले है, वो तो तेजोलेशा वाले है ना, वहां पर भी शुभलेशाएं पाई जाती है, तीनों शुभलेशाएं होती है, और बहुनत्रिक है सारे, और सौधर्म ईशान है, ये सब तेजोलेशा वाले, फिर भी सब मिलकर भी असंख्यात है उनकी संख्या। पद्मलेशा वाले भी असंख्यात है, पद्मलेशा भी मनुष्य तिर्यंच और देवों में होगी, नहीं कृष्णलेशा अनंत हो जाएगी, एक इंद्रियों में है ना, तीनों अशुभलेशा एक इंद्रियों में है, और तीन शुभलेशाएं नार की छोड़ना, और बाकी जो मनुष्य तिर्यंच और देवों में, वो तिर्यंचों में भी पंचेंद्रियों में। तेजोलेशा पद्मलेशा, ये असंगी में कौन कौन सी लेशा होती है, असंगी पंचेंद्रिय में, हाँ कौन सी शुभ, तेजोलेशा, क्योंकि तेजोलेशा भी किसी किसी के हो सकती है, तो मरकर वो देव में भी जा सकता है बहुनत्रिक में, और नरक में भी पहले जाता है, कौन से लेशा में मर कर जाता है, कपोत में मर कर जाएगा, पहले नरक की कपोत लेशा है ना। देखो तेजो लेशा और पद्म लेशा वाले, फिर वेदक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि असंख्यात है, हमने देखे ना, अरे एक एक नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि है प्रत्येक नरक में, तो पहला नरक छोड़कर नीचे तो सारे औपशमिक और वेदक ही है, वहां प्रथमोपशम प्राप्त करने वाले भी हैं और वेदक समय दृष्टि भी है, प्रत्येक स्वर्ग में भी असंख्यात असंख्यात है, अभी सर्वार सिद्धि में संख्यात कहेंगे, तिर्यंच असंख्यात है और मनुष्य संख्यात है, मनुष्यों में भी वेदक समय दृष्टि में कौन से गुणस्थान वाले लेने मालूम है, चौथे से सातवें तक के, तो ये मनुष्यों में संख्यात गिनेंगे, फिर भी अन्य सभी तीनों गतियों में जो है असंख्यात है, तो वेदक समय दृष्टि भी असंख्यात है, औपशमिक समय दृष्टि उपशम समय दृष्टि भी असंख्यात है, सासादन समय दृष्टि और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जीवों के कथन करना चाहिए, एक शायिक समय दृष्टियों को क्यों छोड़ा, संख्यात है ना वो सिद्धों को लेना है उसमें आनंद है, और सिद्धों को छोड़ेंगे तो कितने हो गए, असंख्यात हो गए, क्योंकि भले क्षायिक शुरू करने वाले संख्यात है मनुष्य, मरकर स्वर्गों में जाते हैं, पहले नरक में भी जाते हैं, या भोग भूमि की आयु बांधी हो तो वहां भी जाते हैं, तो सब मिलकर यहाँ संसारी जीवों में क्षायिक समय दृष्टि कितने हैं, तो वो असंख्यात हो गए। अब आगे विशेषात, सामान्य से नारकी असंख्यात होते हैं और प्रत्येक नरक के नारकी भी असंख्यात ही होते हैं, तथा वे सब मोहनीय कर्म से युक्त ही होते हैं, यहाँ युक्त ही वाले भी हैं, इसलिए वो क्षायिक को भी नहीं लिया, क्योंकि उसमें बिना यानी विभक्ति अविभक्ति वाले भी होते हैं ना, इसलिए क्षायिक समय दृष्टियों को यहाँ नहीं गिना है, उसमें पाए जाते, जब हम कहेंगे क्षायिक समय दृष्टि, तो क्षायिक समय दृष्टि में विभक्ति वाले भी है और अविभक्ति वाले भी है, यहाँ कौन से लेने हैं, सारे विभक्ति वाले लेने, इसीलिए ऊपर मोनी कर्म से युक्त सामान्य और विशेष नारकियों का प्रमाण असंख्यात कहा है। अनंत जो मार्ग अनंतर यानी उसके बाद ऊपर जो लिस्ट बताई ना, जो मार्गणा स्थान गिनाए हैं उनमें भी प्रत्येक का प्रमाण असंख्यात है, अभी हम देख के आए, हरेक की चर्चा करते आए है, अभी जो हमने एक इंद्रिय अन्य एक इंद्रियों की बात देखी थी, बादर वनस्पति का ही प्रत्येक देखी थी, वो सब अपने अपने कितने हैं, तो असंख्यात हैं, और वे सब मोनीय कर्म से युक्त होते हैं, अतः उनका कथन नारकियों के समान कहा है। हमने देवलाली में एक बार वो प्रवचन सुन रहे थे, उसमें गुरुदेव के प्रवचन में ये बात आई थी कि एक निगोद को छोड़ेंगे तो तो विकल इंद्रिय में हर एक या अन्य जो प्रत्येक जो सॉरी एक इंद्रिय जीव है पृथ्वी का वगैरह प्रत्येक अपने अपने असंख्यात है जीव, यानी ये पता था तभी तो कह सकते हैं ना ये बात। द्विइंद्रिय असंख्यात है, तीनइंद्रिय असंख्यात है, चतुरइंद्रिय असंख्यात है, पंचेंद्रिय असंख्यात है, और वो वनस्पति को छोड़कर अन्य भी सभी अपने अपने असंख्यात हैं कि जहां निगोद इंक्लूड करेंगे वहां अनंत हो जाएंगे। तिर्यंश गति में ये नरक गति की बात पहले बता रहे हैं, और नरक गति में जो कथन है कौन सा विभक्ति वाले है और वो असंख्यात है, तो बाकी अन्य मार्गणाएं भी बता दी। तिर्यंश गति में तिर्यंशों में मोहनीय विभक्ति वाले जीव कितने हैं तो अनंत है। ये ऊपर जो सबको इकट्ठा क्यों किया, एक लिस्ट बनाई जहां असंख्यात हो सकती उसको इकट्ठा कर दिया। अब तिर्यंश गति में तिर्यंश गति इतना ही कहेंगे, तिर्यंश गति में मोहनीय विभक्ति वाले कितने हैं तो अनंत है, क्योंकि वो निगोद तिर्यंश गति में आते हैं ना। अभी ऐसे विभाजन करेंगे जहां जहां निगोद उसमें हो सकता है उन मार्गणाओं में कहेंगे अनंत है। इसी प्रकार सभी एकेंद्रीय जीव जब हम एकेंद्रीय में लेंगे तो निगोद उसमें आ जाते हैं तो अनंत होती है संख्या। वनस्पति का एक अकेला कहेंगे तो भी अनंत, बादर वनस्पति का एक कहेंगे तो भी अनंत क्योंकि बादर निगोद उसमें आ गई, तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त क्योंकि बादर निगोद में भी पर्याप्त होते हैं अपर्याप्त होते हैं। यह प्रतिष्ठित को नहीं लिया है, प्रतिष्ठित तो प्रत्येक होती है और उनकी संख्या तो असंख्यात है। यहाँ तो बादर वनस्पति में बादर निगोद की अपेक्षा अनंतपना घटित होता है। सूक्ष्म वनस्पति का एक जो सभी निगोद ही होते हैं इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, फिर सामान्य निगोद, सामान्य निगोद कहते तब सूक्ष्म और बादर निगोद आते हैं उसमें। बादर निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, फिर जब हम नपुसक वेदी कहेंगे तो कितने हैं वो अनंत हैं। स्त्री वेदी पुरुष वेदी हमने असंख्यात में देखे थे, अब ये अनंत हैं। क्रोध मान माया और लोभ कषाय वाले मत्य ज्ञानी शुता ज्ञानी असंयत, ये जहां जहां ये निगोद की बात घटित होती है जिनों में, वो सब अनंत में चली जाएगी। कृष्ण नील और कापोतलेशा वाले, पहले हमने पीत और पद्म वालों को लिया था, शुक्ल वालों को लिया था, असंख्यात देखा था, शुक्ल वालों को वहां छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि उसमें अविभक्ति वाले भी होते इसलिए छोड़ा था। हमें ऐसी लिस्ट वहां चाहिए थी कि उसमें विभक्ति वाले होने चाहिए, वो असंख्यात होने चाहिए। अविभक्ति वाला ऑप्शन जहां है उसको हमने छोड़ दिया था। शुक्ल लेशा लेते उसमें विभक्ति वाले भी है अविभक्ति वाले भी है, बारहवें और तेरहवें वाले अविभक्ति वाले हो जाते हैं, इसलिए उसको वहां नहीं लिया था। अब यहाँ कृष्ण नील और कापोतलेशा वाले अभव्य मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों के कहना चाहिए। ये भव्य को क्यों छोड़ा? भव्य भी तो अनंत है। हाँ, हमें भव्य और विभक्ति वाले ही चाहिए। भव्यों में तो अविभक्ति वाले भी है, बारहवें और तेरहवें चौदहवें वाले, तो इसलिए उनको छोड़ा। यहाँ पर ऐसी मार्गणाएं ली है जहां मात्र विभक्ति वाले हैं और जो अनंत है। क्या लें ये किस तरह से उसको चूज यहां लेते हैं विशेषार्थ। तिर्यंशों का प्रमाण अनंत होते हुए भी वे सबके सब मोहनीय कर्म से युक्त होते, ये बात, ये क्राइटेरिया चाहिए। अनंत भी होने चाहिए और सभी के सभी मोहनीय से युक्त होने चाहिए। जब हम भव्य कहेंगे तो हो गए आनंद, परंतु सभी के सभी युक्त नहीं, उसमें रहित वाले भी हो सकते हैं, इसलिए उसकी लिस्ट यहां नहीं ली है। इसी प्रकार ऊपर और जितने मार्गणा स्थान गिनाए हैं वे सब अनंत राशि प्रमाण है और मोहनीय कर्म से युक्त है, दोनों ही उसमें वो बातें होनी चाहिए। अनंत भी होने चाहिए और मोहनीय से युक्त ही होने चाहिए। बादर अप्रतिष्ठित नहीं लिए, क्यों? बादर अप्रतिष्ठित कहेंगे तो वो असंख्यात हो जाएंगे, हमको अनंत चाहिए। जिसको नहीं लिखते वो अप्रतिष्ठित हो जाता है उसमें, या जो नहीं लिखेंगे तो उसमें सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दोनों आ गए। कहाँ पर? असंख्यात में देखो, ऊपर असंख्यात की बात निकालो, नीचे से क्या ऊपर से? हाँ, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर लिखा है, और अप्रतिष्ठित नहीं लिया तो उसके ऊपर जो बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर लिए। प्रत्येक शरीर जब अकेला लिखते हैं तो वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक समझ सकते हैं हम, और ये प्रतिष्ठित प्रत्येक, या वहां दोनों को भी मिलकर अगर लिखना है, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित को मिलकर भी लिखना है तो भी वो असंख्यात हो जाते हैं। प्रतिष्ठित वो तो असंख्यात है, उसके आधार से जो सामान्य निगोद रहते हैं वो अनंत है। बादर प्रतिष्ठित प्रत्येक लिखा है ना, प्रतिष्ठित प्रत्येक लिखा है, और बादर निगोद अलग बात है। उनको भी कहीं कहीं बादर निगोद कह देते हो, बादर प्रत्येक शरीरी जिनके आधार से निगोद रहते हैं, तो उपचार से जैसे हम कहेंगे ना ये आलू प्याज, वो तो आधार है, प्रत्येक शरीर वाले उसके आधार से साधारण रहते, तो उसी को हम निगोद भी कह देते हैं। वो असंख्यात है पूरे, हाँ पूरे लोक में कितने स्कंद है असंख्यात है, फिर अंडर कितने, आवास कितने, वो सब अपने अपने असंख्यात लोक प्रमाण है। देह भी असंख्यात लोक प्रमाण, और एक एक देह में अनंत जीव, एक एक देह में पूरे सब देह मिलकर कितने हैं इस विश्व में लोकाकाश में, तो 5 बार असंख्यात लोक लिखकर आपस में गुणा करो, इतने तो निगोद के देह हुए, देह और एक देह में अनंत जीव असंख्यात। हाँ दोनों असंख्यात। हमने वो जब संदृष्ट अधिकार में भी या मार्गणाओं में भी जो देखा था ना, उसका प्रमाण कितना होता है, वो असंख्यात होते हैं, प्रतिष्ठित कितने अप्रतिष्ठित। और कभी कभी क्या है, शुरू में वो अप्रतिष्ठित होते हैं, फिर प्रतिष्ठित होते हैं, फिर और जाके फिर अप्रतिष्ठित होते हैं, उसमें तो वही की वही होते हैं, इसलिए प्रतिष्ठित लिखा और फिर सप्रतिष्ठित लिखा। हाँ सूक्ष्म वनस्पति का एक सूक्ष्म निगोद ही है, उसमें कोई अन्य भेद नहीं है। हाँ बादर निगोद लिखा ना पहले, देखो पहले कौन से लिखे, सूक्ष्म वनस्पति का एक, और इनके पर्याप्त अपर्याप्त, फिर अभी वनस्पति का एक की अपेक्षा न करके अभी निगोद इतने साधारण शरीर वाले, यही अपना क्राइटेरिया है, निगोद इतना ही क्राइटेरिया, तो निगोद में सूक्ष्म भी हो जाएगी बादर भी हो जाएगी, इसलिए फिर दोबारा लिया। ये इस तरह से कथन में जो डिफरेंस है ना, तो वो ऐसा कहेंगे सूक्ष्म निगोद ही सूक्ष्म वनस्पति का एक नहीं है, या निगोद ही अकेला वनस्पति का एक नहीं है, ऐसा कहेंगे तो वनस्पति का एक होंगे सभी भेद है, तो ऐसा कहते हैं तो प्रश्न उठाते हैं अरे निगोद वनस्पति का एक नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, उसका अर्थ बराबर नहीं निकाला है। ये जो आलाप की पद्धति होती है ना, जैसे सामान्य पर्याप्त और अपर्याप्त, तो हम कहेंगे अपर्याप्त मनुष्य वो मनुष्य नहीं है, सामान्य मनुष्य नहीं है, तो सामान्य मनुष्य ये कथन अलग है और अपर्याप्त मनुष्य कथन अलग है, तो आलाप में भेद है, वह आलाप वो नहीं है ये जो कहना है, तो अपर्याप्त मनुष्य मनुष्य नहीं है कहने जैसा है। मनुष्य नाम का जो आलाप है वो अलग है और अपर्याप्त मनुष्य नाम का आलाप अलग है, परंतु अपर्याप्त मनुष्य कहेंगे तो मनुष्य ही है ना, उससे कोई भिन्न तो है नहीं, उसका भेद है। जैसे कहते जो भेद है वो पूरा नहीं है, एक सामान्य होता है और एक उसका भेद होता है, तो ऐसी वहां अपेक्षा करके कथन है, और उसका लोग उसी को एक प्रूफ करके देते हैं, देखो निगोद ये वनस्पति का एक नहीं है ऐसा कहते हैं, वो बात नहीं वहां कहना चाहते, क्योंकि वनस्पति का एक कहेंगे तो उसमें सूक्ष्म भी है, बादर भी है, प्रत्येक भी है, साधारण भी है, तो अकेले साधारण को हम वनस्पति का एक नहीं गिन सकते, वनस्पति का एक कहेंगे तो सभी भेद आ गए, परंतु जब निगोद कहेंगे तो वनस्पति कायिक ही है, उसके अलावा अन्य कुछ नहीं है। कौन से कायिकों में आते हैं निगोद, तो वनस्पति कायिक में ही आते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ सामान्य मनुष्य, हाँ एक मनुष्य नहीं और एक लब्धि पर्याप्त मनुष्य, ऐसे चार हो जाएंगे। हाँ आगे भेद कर सकते कर किया है ना, भोग भूमि जा आर्य म्लेच्छ सब करो, बताए भी है उसके, जितने आप उसमें भेद कर सकते उसके कर सकते हैं। हाँ अब सिद्धों में कर दिए ना, अवगाहना की अपेक्षा किया, जल सिद्ध स्थल सिद्ध किया, हाँ अवगाहन वो तो बता दिए। हाँ बहुत सारे उसमें भेद कर सकते, पूर्व कौन सी पर्याय थी उस अपेक्षा से भी कहेंगे, कौन से वेद के साथ वो आए थे, जहां जो अपेक्षा लेते हैं तो उसमें भेद कर सकते हैं, परंतु भेद करके कथन अलग बात है और उसको तो निगोद वनस्पति का एक नहीं है कहना वो अलग बात है ना। किस अपेक्षा से कथन आया है उसको आगे पीछे का रेफरेंस बिना, खाली कोई एक वाक्य प्रूफ नहीं हो सकता ना, वहां किस अपेक्षा से कहा है उसको ख्याल में लेना चाहिए। ओग मैंने उसमें गुणस्थान से, तो गुणस्थानों में सिद्धों को नहीं गिनते थे, सिद्धों को अलग से गिनते थे। हाँ हाँ तो क्योंकि जहाँ जहाँ जो मार्गणा एप्लीकेबल रहती थी वैसे गति मार्गणा की अपेक्षा सिद्धों को उसमें नहीं किया, फिर भी उनको सिद्ध गति अलग बताते। हाँ तो जहाँ जो मार्गणाएं में उनको नहीं लिया था तो वो सिद्धों का कथन ही पूरा अलग हो जाता है। मार्गणा में तो संसारी जीवों की अपेक्षा हम उसके जो 20 प्ररूपणाएं में जो घटित करते हैं तो पहले में पहले संसारी जीवों पर ही घटित करते हैं, फिर सिद्धों में क्या होता है ये किसी को प्रश्न हो सकता है, इसलिए सिद्धों की भी बात वहां बताई जाती है, इसलिए हर जगह सिद्धों की अलग बात बताई है। कथन तो संसारी जीवों में ही हमको ढूंढना था, जैसे इंद्रियों की अपेक्षा हमने की तो पांच ही भेद है ना उसके, तो छठा भेद करना है तो अनिंद्रिय करना पड़ेगा, जो इंद्रियों से रहित है काय से रहित है ऐसा उनको कहना पड़ेगा, तो वहां तो हम शून्य लिख देते हैं, तो वहां वो मार्गणा में उनको नहीं लेते हैं, क्योंकि काय तो है नहीं सिद्धों के, ना इंद्रिया है ना गति है ना कषाय है, तो जहां है ज्ञान है तो वहां कौन सा ज्ञान है, तो हम फिर कहेंगे केवल ज्ञान है केवल दर्शन है इस तरह से। तो ये हो गया अभव्य मिथ्या दृष्टि, ऊपर पढ़ रहे थे ना हम एकांत पुरुष पर तीसरी लाइन, अभव्य हो गई मिथ्या दृष्टि नीचे हाँ मनुष्य गति में अनंत राशि मोहनी कर्म सीखते, उनका कथन तिरंजंगी समान कहा है मनुष्य गति में 73 नंबर का पॉइंट जयदेवला का। मनुष्य गति में मनुष्यों में मोहनीय विभक्ति वाले जीव कितने हैं, विभक्ति वाले पूछे असंख्यात है, ये असंख्या जब कहते हैं तो लब्धि अपर्याप्तों को साथ में मिलकर लिया, पर्याप्त अपर्याप्त सब मनुष्यों में पूछा ना, तथा मोहनीय अविभक्ति वाले जीव संख्यात है मनुष्य गति में पूछा है, अकेले मोहनीय अविभक्ति वाले जीव कितने ऐसा पूछेंगे तो क्या कहेंगे, हाँ अनंत है। अब यहां हमने मनुष्य गति के लिए लिमिटेड कर दिया, सिद्धों की ही जीव कह दिया, वो मनुष्य है क्या क्या है ऐसा नहीं, जीव कितने हैं अविभक्ति वाले तो अनंत है। अब यहां क्या पूछा, मनुष्य गति में अविभक्ति वाले कितने हैं, तो कौन कौन से गुणस्थान वाले लेना है, 12, 13, 14। हाँ इसी प्रकार पंचेंद्रिय ये कितने हैं है पूछा है, यहां पर भागा भाग में कितने भाग प्रमाण है पूछा था, वह अनंत बहुभाग अनंत भाग संख्या बहुभाग संख्या वो बात बताई थी, यहाँ एक्चुअली संख्या कितनी इतना ही पूछा। इसी प्रकार पंचेंद्रिय यानी पंचेंद्रियों में कितने हैं विभक्ति वाले असंख्यात और अविभक्ति वाले संख्यात, क्योंकि वो मनुष्यों की अपेक्षा लगती है अविभक्ति में पंचेंद्रियों में, पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रस त्रस पर्याप्त इनमें भी यही एप्लीकेबल होगा, पांच मनोयोगी कितने हैं विभक्ति वाले असंख्यात, पांच मनोयोगी कहां कहां पाए जाएंगे, चारों गति में, संगी पंचेंद्रियों में, सभीयों में पाए जाएंगे, और पांच मनोयोगियों में अविभक्ति वाले जीव कितने हैं, कौन सा वाला, कौन सा गुणस्थान? बारवा ही, अकेला बारवा। क्यों? पांचों प्रकार के मनोयोग बताए हैं। हाँ, दो मनोयोग केवली में नहीं, मनुष्य गति में तो बता चुके। मनुष्य गति के अनुसार यही कथन, कौन सा कथन? असंख्यात और संख्यात वाला, विभक्ति वाले असंख्यात और अविभक्ति वाले संख्यात, ये जो कथन है, प्रपोर्शन है, ये जो प्रमाण बताया है, वो अन्य कौन कौन से मार्गणा में एप्लीकेबल है? तो यहाँ पांच मनोयोगी वाला योग मार्गणा में जो पांच मनोयोगी वाला भेद है, पांच मनोयोगी ने एक सामान्य और उसके सभी भेद, तो ये सभी भेद कहाँ तक होते हैं? बारहवें तक। तेरहवें वाले को कौन से मनोयोग है? हाँ, सत्य और अनुभव। हाँ, तो उनकी अपेक्षा नहीं ली यहाँ पर, पांचों ली ना, तो पांचों कहाँ तक है? बारहवें तक। तो वहां पांचों होते हुए अविभक्ति कहाँ है? तो अकेला बारहवां गुणस्थान होगा। निरंतर नहीं है फिर भी, जैसे ऊपर मनुष्य भी निरंतर नहीं है असंख्यात, फिर भी असंख्यात और संख्यात ये भेद वहां हो चुका। यहाँ कभी होती है काल अंतर की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रमाण की बात हो रही है। और प्रमाण की बात जब कहते तो मैक्सिमम जब होती है तब कही जाती है, जहां जहां ये हम सब प्रमाण गिनते हैं ना कि केवली कितने होते तो इतने करोड़ होते हैं, या छठे वाले इतने होते, सातवें वाले, जब कभी मैक्सिमम संख्या होगी उसमें कभी ऐसा भी काल होगा कि थोड़े कम हो जाते हैं, यहाँ उत्कृष्ट संख्या बताई जाती है। ऐसा एक गाथा आई है समय ज्ञान चंद्रिका में भी, बीच में जिसको मध्य दीपक कहते हैं ना, वहां ऐसा लिखा है, जहां इतनी सारी जो बातें बताई है वो उत्कृष्ट संख्या समझना चाहिए, जितनी मार्गणाएं बता चुके और जो आगे आने वाली है उन सब में ये बात लागू होगी, ऐसा वहां लिखा है। आपको याद होगा, अभी आपने डीटीपी की तो मेरे ख्याल से वो ज्ञान मार्गणाएं पहले पहले बताया होगा, देखेंगे। तो देखो, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योग भी बारहवें तक है, और उसमें भी और पहले भी है पहले गुणस्थान से, तो पांचों वचन योगी है। कहां से हो गए? पंचेंद्रियों में, और पांचों लिखे हैं। द्विंद्रियादि में दो ही मनो वचन योग होते हैं, तो यहाँ पांचों वाले हैं, तो उसका गुणस्थान पहले से अभी हम समझेंगे, बारहवें तक होते हैं, तो उसमें अविभक्ति वाले हैं वो बारहवें वाले, और विभक्ति वाले ग्यारहवें तक, तो ग्यारहवें तक तो असंख्यात हो गए और बारहवें वाले संख्यात हो गए। ये जो असंख्यात और संख्यात लिखा है ये वहां एप्लीकेबल है, ये बात समझनी है। आविनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, चक्षु दर्शनी, अवधि दर्शनी, ये सब उसमें एप्लीकेबल है। शुक्ल लेशा वालों को भी लेना है, शुक्ल लेशा में भी असंख्यात और संख्यात का जो प्रपोर्शन है, तो शुक्ल लेशा में विभक्ति वाले असंख्यात है। कौन से गुणस्थान से कहां तक लेना? हा? एक से ग्यारह तक लेना, और शुक्ल लेशा वाले संख्यात अविभक्ति वाले कहां से लेना? तेरहवें को कहां छोड़ना? बारह और तेरह भी लेना, शुक्ल लेशा है ना, वहां पर लेशा गिनते हैं तेरहवें तक, वहां योग है तो वहां लेशा भी गिनाई है। और संगी जीवों को कथन करना चाहिए, संगी जीव उसमें कौन से लेना? अविभक्ति वाले संगी। हाँ बोलो, संगी जब मार्गणा है तो बारहवें तक ही होती है, तेरहवां और चौदहवां संगी असंगी से रहित है। यहां हम मार्गणा पूछ रहे, जीव समास नहीं, क्या नहीं ना, जीव समास पूछेंगे तो संगी पंचेंद्रिय कहेंगे अरिहंतों को, अब जब संगी मार्गणा कहेंगे हाँ, तो बारहवें तक ही हो गए। विशेषार्थ, सामान्य मनुष्यों का प्रमाण असंख्यात है, उनमें असंख्यात जीव मोहनीय कर्म से युक्त है, और संख्यात क्षीण मोहनीय जीव मोहनीय कर्म से रहित है। जब यहाँ क्षीण मोहनीय कहे तो कौन से लेना, 12वें 13वें और 14वें, उन जिनका मोह क्षय हो चुका है ऐसे। हाँ, मनुष्य गति में क्षीण मोहनीय ऐसा ले रहे ना। ऊपर जो और मार्गणाएं गिनाई है उनमें से प्रत्येक में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? वो असंख्यात और संख्यात वाला जो भेद है, विभक्ति वाला और अविभक्ति वाला, वो उनमें भी ऐसा ही कथन, संख्या की अपेक्षा समानता है, अन्य समानता नहीं देखनी है। पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनियों में मोहनीय विभक्ति वाले और मोहनीय अविभक्ति वाले जीव कितने हैं तो संख्यात है। देखो यहां अपर्याप्तों का आलाप निकाल दिया। जब हमने मनुष्यों में कहा था तो असंख्यात जीव होते हैं विभक्ति वाले ऐसा कहा था, क्यों? वहां मनुष्य लब्धि अपर्याप्त को भी गिनाया था साथ में। जब पर्याप्त मनुष्य कितने हैं तो संख्यात है। हमने कहा ना उत्कृष्ट वो 29 अंक प्रमाण संख्या होती है, उसमें भी कौन सा वेद है उसकी अपेक्षा नहीं, वो पर्याप्त मनुष्य है इतना ही लेना है तो संख्यात है। और अविभक्ति वाले भी कितने हैं? संख्यात है। वो भले कितवा भाग है तो हमने देखा तो वो तो संख्यात बहुभाग और संख्यात वा भाग होगा, उसकी चर्चा नहीं यहाँ पर, यहाँ प्रमाण पूछा है। हाँ नहीं, हमेशा सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य ने। जब पर्याप्त मनुष्य कहेंगे तो उसमें मनुष्य ने भी आ गई। पर्याप्त में कौन से? तीनों वेद वाले आ गए उसमें। उसमें हमने वेदों का डिफरेंस नहीं किया था। अब जब मनुष्यनी कहते हैं तो पर्याप्तों में ही मनुष्यनी नाम का भेद होगा, परंतु उसमें वो पुरुष वेद वाले नपुसक वेद वालों को छोड़कर भाव वेद की अपेक्षा मनुष्यनी कहा है। द्रव्य से पुरुष हो सकती है, वह दोनों उसमें हो जाए। इनको मनुष्यनी में जो कोई आलाप घटित होते हैं, जैसे चौथे गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था में मनुष्यनी वाला भेद नहीं होगा, क्योंकि मरकर वो मनुष्यनी वाला नहीं होता ना, भाव वेद भी उसके स्त्री वेद नहीं होता। तो ये आलापों में जहां कोई डिफरेंस है उसकी अपेक्षा इसका भेद ही अलग गिनाया है। मनुष्यनी में सम्य दर्शन हो सकता है, 14वें गुणस्थान प्राप्त होकर वो मोक्ष भी जा सकता है, परंतु कोई सम्यक्त्व के साथ जन्मता है तो मनुष्यनी वाला भेद नहीं हो सकता। नपुंसक में हो जन्म सकता है, क्योंकि नार की पहले नरक में सम्यक्त्व के साथ जा सकता है। चौथे गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था में नपुंसक वेद तो पाया जा सकता है, पुरुष वेद तो होता ही है, परंतु स्त्री वेद नहीं हो जाता। इसलिए मनुष्यनी वाला आलाप ही उन्होंने अलग निकाला, और ऐसा भी वो संख्या बताने के लिए भी उसको ले लिया अलग से। तो विभक्ति और अविभक्ति, अविभक्ति जब मनुष्यनी कहते हैं, देखो जब वेद मार्गणा है तो उनको अपगत वेदी कहेंगे 9वें के ऊपर, और जब मनुष्य गति में हम चार भेद कर रहे हैं, जब मनुष्यनी कहते हैं तो जन्म से जिसका जो भाव वेद है वो तो बाद में चेंज नहीं होता है, तो जन्म से वो मनुष्यनी है और द्रव्य से पुरुष है, और ऐसे जीव 9वां गुणस्थान पार करके मोक्ष भी चले जाएंगे, फिर भी उनको 13वां हो या 14वां हो तो भी वो कौन सा आलाप वाला है? वो मनुष्यनी वाला कहेंगे। वेद मार्गणा की बात आएगी तो स्त्री वेद वाला कहाँ तक कहेंगे? 9वें तक ही कहेंगे, उसके आगे उसको स्त्री वेद वाला नहीं कहेंगे। वहां कौन सी मार्गणा चल रही है उसका विचार करना चाहिए। जैसे अभी आपने बात बताई ना, वो संगी की बात आई, जीव समाज की प्ररूपणा कर रहे हैं तो 13वें 14वें वाले को भी हम संगी पंचेंद्रिय कहेंगे, परंतु जब संगी मार्गणा की बात आती है तो 12वें तक ही संगी कहेंगे, उसके आगे वो संगी असंगी से पार हो जाएंगे। मनुष्य गति मार्गणा में, गति मार्गणा की अपेक्षा मनुष्यनी जो भेद है उसमें कितने गुणस्थान कहेंगे हम? 14वां, 14 के 14। ये मार्गणा कौन सी चल रही है उसकी बात है। हाँ, पुरुष से यानी द्रव्य से पुरुष और भाव से स्त्री, स्त्री वेद का उदय है पर्याप्त शुरू से ही। वो सम्य दृष्टि नहीं है परंतु स्त्रीवेदी वाला है ना, द्रव्य से पुरुष है। यहाँ सम्य दृष्टि की कहाँ बात आई है? हाँ नहीं नहीं नहीं, उन्होंने प्रश्न पूछते समय उन्होंने कंफ्यूजन हुआ। हाँ हाँ, बाद में सम्य दर्शन किया उसने। कभी किए गए, आठवें वर्ष के बाद है। स्त्री पुरुष यानी सम्य दर्शन हुआ है, फिर भी वो भाव वेद पलटता नहीं है। नहीं, जिस वेद का उदय है जन्म से लेकर वही वेद रहता है, वो पलटता नहीं है। जिस वेद में जन्मा है वो उस भाव में वो वेद चेंज नहीं होता है। देवों में ऐसा पढ़ा था कि जो द्रव्य का वेद है वही भाव का है, ऐसा पढ़ा था आपने। चेंज कहीं भी नहीं होता, चेंज तो कहीं भी नहीं होता, परंतु तीनों वेद यानी जो जिसको कहते ना हेट्रो, यानी द्रव्य से कोई एक बात है और भाव से कोई उल्टी है, ये कहाँ संभव है मनुष्य और तिर्यंचों में। हाँ, यानी द्रव्य से तो पुरुष है और भाव से स्त्री है, या द्रव्य से स्त्री है और भाव से पुरुष है, ये जो डिस्पैरिटी हम कहते हैं भिन्नता है, ये मनुष्य और तिर्यंचों में हो सकती है, परंतु देवों में तो स्त्री भाव से भी स्त्री है और द्रव्य से भी स्त्री है, पुरुष है वो भाव से भी और द्रव्य से पुरुष है, नारकियों में भी द्रव्य से और भाव से नपुंसक है। हाँ, भोग भूमि में दो ही है, भोग भूमि में दो ही वेद है। हाँ, जो द्रव्य से वही भाव से। हाँ, देवगति में जैसा है, कर्म भूमि के तिर्यंच और मनुष्यों में ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए हम मनुष्यनी को अलग गिनाया है, यानी मनुष्यनी में केवल स्त्री वाली मनुष्यनी, यानी द्रव्य की स्त्री नहीं लेना, भाव की भी लेना। ना वो उसमें से कुछ भी निकलता है स्त्री को मोक्ष है, परंतु वो द्रव्य स्त्री को मोक्ष मानते हैं। हाँ, नो कर्म आहार है तो आहार है, केवल आहार बता दिया, ये ऐसे सब गड़बड़ी चलती है। ये ख्याल में आया, अभी बढ़ेंगे आगे। क्या कह रहे थे हम, पर्याप्त मनुष्य, यही अटके ना, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनियों में मोहनीय विभक्ति वाले और मोहनीय अविभक्ति वाले जीव कितने हैं तो संख्यात है, ये ख्याल में आया ना। मनुष्यनी जब कहेंगे तो 14 सभी गुणस्थान उसमें समझना, परंतु अभी सिद्धों को इसमें नहीं लेना है। मनुष्यनी जब कहेंगे तो मनुष्य गति तक ही वो लिमिटेड है। इसी प्रकार मनपरे ज्ञानी और संयतों के कथन करना चाहिए, यानी मनपरे ज्ञानी है और मोहनी के विभक्ति वाले हैं, तो कहां से गुणस्थान से कहां तक लेना, छठवें से कहां तक, ग्यारहवें तक विभक्ति वाले, और मोहनी की अविभक्ति वाले और मनपरे ज्ञानी 12वें गुणस्थान वाले, तो दोनों ही संख्यात है। कितने भाग प्रमाण है तो कहेंगे वो संख्यात बहुभाग है, वो संख्यात का भाग है। संयतों में भी यही कथन होगा, संयत कहां से कहां तक पाए जाते हैं, छठे से कहां तक, 14वें तक। हाँ, संयत कहेंगे। हाँ, विशेषण, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी, मनपरे ज्ञानी और संयत जीवों का प्रमाण संख्यात है। इसमें संख्यात बहुभाग प्रमाण जीव मोहनीय कर्म से युक्त है और संख्यात एक भाग प्रमाण जीव मोहनीय कर्म से रहित है। ये तो आसान है ना अभी समझने में। अब अभी तक तो अपराजित तक के देवों को लिया था। हाँ, अब सर्वार्थ सिद्धि के देवों में मोहनीय विभक्ति वाले जीव कितने हैं तो संख्यात है। तो ऊपर जो संख्यात वाला लिस्ट थी उसमें इसको लिखना था ना, क्यों नहीं लिखा? हाँ, उसमें अविभक्ति वाले भी होते हैं, तो यहां सभी के सभी विभक्ति वाले ही है, इसलिए इनकी लिस्ट अलग बनाई। मनुष्यों में नहीं गिनाया, मनुष्यों के साथ नहीं गिनाया उनको, या संयतों के साथ नहीं गिनाया, क्योंकि वे भी संख्यात है, परंतु उसमें तो विभक्ति वाले भी होते हैं, अविभक्ति वाले भी होते हैं। इनमें सर्वार्थ सिद्धि वालों में सभी विभक्ति वाले हैं, तो संख्यात है। अभी ऐसा वाला जो आलाप है, सभी विभक्ति वाले हैं और सभी संख्यात है, ऐसे कौन कौन हो गए तो बता रहे, आहारक कायोगी, आहारक मिश्र कायोगी, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत और सूक्ष्म सांप्राय संयतों के कथन करना चाहिए। अब उसमें अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता, उसका विचार यहां पर नहीं करना है, उनकी संख्या कितनी हो सकती है, तो संख्यात होगी। विशेषार्थ, जिस प्रकार सर्वार सिद्धि के देव संख्यात होते हुए भी वे सब मोहनीय कर्म से युक्त होते हैं, उसी प्रकार ऊपर कहे गए शेष मार्गणा स्थानों में भी जानना चाहिए है संख्यात और सभी के सभी विभक्ति वाले हैं, मोहनीय की विभक्ति वाले। अब मार्गणा दूसरी बदल रही है, अभी काय योगियों की योग मार्गणा की बात चली, गति मार्गणा की बात हो गई, इंद्रिय मार्गणा को वो पहले उसमें वो जहाँ जो पॉसिबल है वो बता गए थे, अब यहाँ काय मार्गणा, काय योगियों की योग मार्गणा बता रहे हैं। क्योंकि पहले मनोयोगी वचन योगी उनको उन्होंने गिना था, पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी, अब काय योगी रहे थे यहाँ बता रहे। काय योगियों में मोहनीय विभक्ति वाले जीव कितने हैं, तो अनंत हैं, तथा मोहनीय अविभक्ति वाले जीव संख्यात हैं। अब यहाँ अनंत और संख्यात ऐसा प्रोपोर्शन है। इसी प्रकार औदारिक काय योगी, औदारिक काय योगी जीव कितने हैं, विभक्ति वाले अनंत, और अविभक्ति वाले औदारिक काय योगी कौन से गुणस्थान वाले हैं, हाँ 12वां और 13वां दोनों आ गए। औदारिक मिश्र काय योगी अनंत और संख्यात कहाँ लेना है, 13वें के हाँ कौन सा समुद्घात, कपाट वाला, हाँ औदारिक मिश्र अविभक्ति वाले, और बाकी सभी वो सारे अनंत में डाल दो। औदारिक मिश्र किसको किसको होगा, वो एक इंद्रिय को होगा तो अनंत में गिन लेना, बाकी तो मनुष्य तिरंचों को भी होगा ही होगा, पंचेंद्रियों को होगा उसकी बात नहीं है, वो एक इंद्रिय निगोदों में औदारिक काय योग है ना, तो अनंत संख्या घटित हो जाती है वहां पर। कार्मण काय योगी, ये कार्मण काय योग में भी विग्रह गति में अनंत जीव पाए जाते हैं, और कार्मण काय योगी अविभक्ति वाले हाँ प्रतर लोक पूरण में तीन समय के लिए। अचक्षु दर्शनी, श के ऊपर अफार देना, दर्शनी है ना, क्योंकि अचक्षु दर्शन एक इंद्रियों में भी है, वो तो केवल अचक्षु दर्शनी है, और बाकी अचक्षु दर्शनी में अविभक्ति वाले कहां पर हो गए, मारवी गुणस्थान में, अचक्षु दर्शन है और अविभक्ति है। बहुव्य जीव, तो बहुव्य तो कितने अनंत तो पड़े विभक्ति वाले, और अविभक्ति वाले बहुव्य हाँ 12वां 13वां और 14वां। आहारक जीवों में जानना चाहिए, आहारक विभक्ति वाले तो समझ सकते सभी है 11वें तक के, और आहारक और अविभक्ति वाले 12वां और 13वां, 13वें में वो तीन समय छोड़कर। विशेषार्थ, काय योगियों का प्रमाण अनंत है, तथा उनमें मोहनीय कर्म से युक्त और मोहनीय कर्म से रहित दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जो 12वें और 13वें गुणस्थानवर्ती जीव है वे मोहनीय कर्म से रहित है, अतः उनका प्रमाण संख्यात है, और शेष 11 गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय कर्म से युक्त है, अतः उनका प्रमाण अनंत है। ये काय योग जो है ना, योग 13वें तक है, इसलिए जब काय योगी कहते हैं तो 12वें और 13वें ही लेना अविभक्ति वाले, 14वें वाले अयोगी है तो योगियों में उसको नहीं लेना। औदारिक काय योगियों का कथन भी इसी प्रकार समझना चाहिए। कार्मण काय योगियों में पहले दूसरे और चौथे गुणस्थान में विग्रह गति को प्राप्त मोहनीय कर्म से युक्त जीव लेना चाहिए, क्योंकि विग्रह गति के गुणस्थान कौन कौन से हैं अगर कहेंगे पूछेंगे तो पहले में, दूसरे में और चौथे में, तीसरे में मरण नहीं होता, पांचवे वाला मरण के समय में पांचवा होगा तो भी विग्रह गति में उसका चौथा हो जाता है, पांचवा गुणस्थान कंटिन्यू नहीं रहता दूसरे भाव में। प्रत्येक समय में अनंत जीव विग्रह गति को प्राप्त होते हैं, तभी भी ट्रैफिक जाम नहीं होता वहां पर। देखो उपपाद वाले मारणांत, उसमें मारणांतिक वाले भी है, अभी जो विग्रह गति में नहीं गए है उनका भी खचोखच भरा है ना, यानी सभी जो पूरा लोक ये बिना शरीर वालों से तेजस कारमान वालों से भरा पड़ा है, जो मर कर अन्यत्र जा रहे हैं और ये मरने के पूर्व मारणांतिक कर रहे हैं, अनंत अनंत जीव समूह उसमें पड़ा है। देखो ये ख्याल आता है ना, तो ये तो हम तो मरण के भय से ही डरते हैं। मरण का दुख नहीं, क्योंकि वो तो पता ही नहीं चलता ना, एक समय वाली बात है, दूसरे समय में दूसरे आयु चालू हो जाते, परंतु वो मरने का भय जन्म से लेकर लगा रहता है, अरे मैं मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा। ये डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते ना हम, तो उसमें भी ऐसा ही है, बीमारी से इतनी तकलीफ नहीं होती है, बीमारी के डर से ज्यादा अभी क्या होगा उसका क्या होगा, इसीलिए दवा लेते हैं, ये डर के लिए दवा लेते हैं, बीमारी के लिए थोड़ी देते हैं। ऐसा ही है, कोई कोई औरतें आती है, अभी आती है नहीं, आती थी, मुझे बहुत परेशानी हो रही, क्या हो रहा है ये, इतना इसको झाड़ा झुला उल्टी हो रही, दिन भर साफ करते करते मैं थक गई, यानी उसके लिए दवा क्यों चाहिए। कि मैं परेशान हो गई। तो बच्चे को कितनी तकलीफ है उसकी कुछ बात नहीं। ऐसा ही है ना, क्या नियम है कि जीव अपने ही सोचता है। हाँ गया उसके लिए कौन रोता है, वो तो गया ना, उसके लिए क्या है, ये अपने लिए रोता है जीव, क्योंकि अपनी अभी अनुकूलता में था, सब काम कर रहे थे। अभी कौन करेगा। हाँ प्रत्येक समय में अनंत जीव विग्रह गति को प्राप्त होते हैं, इस नियम के अनुसार उनका प्रमाण अनंत होता है। कार्मण का योगियों में प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात को प्राप्त संयोग केवली मोनी कर्म से रहित होते हैं, वे संख्यात ही है। अब ये भी पूरा लोक व्याप कर बैठे, जिस समय हो गए उस समय की बात है, पूरा लोक व्याप्त है ना, वो भी भक्ति वाले, वे संख्यात हमने देखा था, अधिक से अधिक 40 हो सकते हैं। औदारिक मिश्र काय योगियों में नवीन शरीर धारण करने के प्रथम समय से लेकर, औदारिक मिश्र का योग कहाँ से कहाँ पाया जाता है, विग्रह गति में तो मोड़ वाले में तो कार्मण का योग होता, जब रुजु गति से जाते हैं तो डायरेक्ट उनका औदारिक मिश्र का योग चालू हो जाता है, पर्याप्ति शुरू हो जाती है, तो शरीर पर्याप्ति पूरी होते होने के एक समय पूर्व तक औदारिक मिश्र, और पूरी होते ही औदारिक का योग चालू हो जाएगा। तो कहते हैं औदारिक मिश्र का योगियों में नवीन शरीर धारण करने के पहले प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्त काल पर्यंत संचित हुए पहले दूसरे और चौथे गुणस्थान के तिर्यंच और मनुष्यों का ग्रहण करना चाहिए। ये संचित हुए का अर्थ क्या है? हाँ देखो प्रत्येक समय की बात लेना है ना, क्या कहना है, ये उसका काल कितना है औदारिक मिश्र का योग का, अंतर्मूर्त है, जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती, तो उसमें जीवों को गिनना है, तो एक समय में आ गए, कोई दूसरे समय में, तीसरे समय में, अंतर्मूर्त तक असंख्यात जो समय है, तो असंख्यात समयों में निरंतर जिनके औदारिक मिश्र चल रहा है, जो औदारिक कायोग में चले जाएंगे उनको छोड़ना है ना बाद में, तो एक समय दो समय ऐसे असंख्यात समयों तक जितने उसमें आएंगे उसको हम संचित कहेंगे। नहीं समझे, जैसे स्कूल में तो 10 स्टैंडर्ड्स है, 10वीं क्लास तक के है ना, तो पहले क्लास में एडमिशन लिए, दूसरे वाले लिए, तीसरे वाले लिए, तो जब हम गिनने हैं एट अ टाइम, कहीं भी गिनना है, तो कितने इस स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो क्या गिनेंगे, तो 10 सालों में जिन्होंने ऐसे जो अभी 10वीं में पहुंचे हैं, तो जो 10वीं में पहुंचे हैं, तो कोई 9वीं में, कोई 8वीं में, तो 10 साल में जो संचित हुए उन्हीं को गिनेंगे एक साथ। नई स्कूल चालू हो जाती है तो हाँ ये पहली चालू हो गई, फिर दूसरी चालू, ऐसा करेंगे ना हम, ये 10 सालों में संचित हुए उनको हम गिनेंगे, ये स्कूल के इतने बच्चे हैं। ऐसे ही यहाँ पूरे एक औदारिक मिश्र का जो अंतर्मूर्त काल है, उतने काल में संचित हुए जीव, तो औदारिक मिश्र किसमें पाया जाता है, तो तिर्यंचों में और मनुष्यों में, और वो भी गुणस्थान कौन कौन से हो गए, औदारिक मिश्र अवस्था में गुणस्थान कौन कौन से हो सकते हैं, पहला दूसरा और चौथा ग्रहण करना चाहिए, वे अनंत है और मौनी कर्म से युक्त होते हैं, तथा कपार समुद्घात को प्राप्त औदारिक मिश्र का योगी मोनिय कर्म से रहित जानना चाहिए। वो तो एक समय के लिए ही है, चढ़ने वाले और उतरने वालों का अपना एक समय अलग। इनका प्रमाण संख्यात ही है। अचक्षु दर्शनियों में प्रारंभ से लेकर 11 गुणस्थान तक के जीव, यानी पहले से लेकर 11वें तक के मोनिय कर्म से युक्त और 12वें गुणस्थान के जीव मोनिय कर्म से रहित जानना चाहिए। भव्य और आहारकों में भी 11 गुणस्थान के जीव, 11 यानी पहले से 11वें तक मिलकर 11 ही होते हैं ना, तो 11 गुणस्थानों के जीव मोनिय कर्म से युक्त और शेष मोनिय कर्म से रहित जानना चाहिए। शेष यानी भव्यों में शेष कौन कौन है? 12वां 13वां 14वां, और आहारकों में शेष 12वां और 13वां। हाँ, वो तीन समय छोड़कर, क्योंकि 14वें वाला अनाहारक हो जाता है। इतना विशेष है कि मोनिय कर्म से रहित आहारकों में 12वें और 13वें गुणस्थान के ही जीव होते हैं, 14वें है कि नहीं। अपगत वेदी जीवों में मोनिय विभक्ति वाले जीव कितने हैं? अभी इनमें प्रोपोर्शन उल्टा होगा। अपगत वेदी जब कहते हैं तो सिद्धों को भी गिनना उसमें, तो विभक्ति वाले संख्यात है और अविभक्ति वाले कितने? अनंत है। इसी प्रकार कषाय रहित जीवों के कथन करना चाहिए, यानी कषाय रहितों में विभक्ति वाले कितने हैं? कौन से? 11वें वाले, कषाय रहित और विभक्ति वाले 11वें गुणस्थान, और कषाय रहित अविभक्ति वाले 12वें 13वें 14वें और सिद्ध सभी। सम्यक दृष्टियों में मोनिय विभक्ति वाले जीव कितने हैं? असंख्यात है। कहां से कहां तक लेना? विभक्ति वाले 14वें से 11वें तक। मोनिय अविभक्ति वाले जीव कितने हैं? और सिद्ध भगवान अनंत है। क्षायिक सम्यक दृष्टियों के भी इसी प्रकार कथन करना चाहिए, उसमें संख्यात लिए उन्होंने, असंख्यात होने चाहिए। यहाँ लिखा है ना, समय दृष्टियों में असंख्यात लिखा है ना, तो क्षायिक समय दृष्टियों में भी इसी प्रकार है, यानी विभक्ति वाले असंख्यात है। क्षायिक यानी केवल मनुष्यों को नहीं लेना क्षायिक में, हाँ, यानी नारकियों को भी लेना है, और भोग भूमि वाले 3 इंच मनुष्य भी है, और देव सभी। तो देवों में इतने सागरों तक, भले संख्यात मनुष्य क्षायिक होकर देवों में चले जाएंगे, परंतु ये सागरों तक के कितने, अभी 33 सागर को गिनो, हाँ, उतने काल में कितने जीव क्षायिक होते होते जाएंगे ऊपर, बहुत ज्यादा, इसलिए वो असंख्यात हो जाते। क्षायिक की शुरुआत करने वाले या मनुष्यों में कितने क्षायिक है तो गिने चुने हैं, परंतु वो क्षायिक होकर चले गए ना देव में, नरक में भी गए और भोग भूमि में भी गए, इस तरह लेना उसको। विशेषात मोनिय कर्म से युक्त अपगत वेदी जीव 9वें गुणस्थान के अवेद भाग से 11वें गुणस्थान तक, और मोनिय कर्म से युक्त कषाय रहित जीव उपशांत मोह गुणस्थान में ही पाए जाते हैं। ये विभक्ति वाले बात कर रहे, अपगत वेदी और अकषायों की बात की, अतएव इन दोनों का प्रमाण संख्यात कहा है, क्योंकि ये तो मनुष्यों में ही होता है। तथा शेष सभी ऊपर से, ऊपर के चाहिए, ऊपर के गुणस्थानवर्ती और सिद्ध जीव अपगत वेदी और अकषायी होते हुए मोनिय कर्म से रहित होते हैं, अतः इन दोनों का प्रमाण अनंत कहा है। संसारस्थ सम्यक दृष्टियों और क्षायिक सम्यक दृष्टियों का प्रमाण असंख्यात है, किंतु उसमें सिद्धों का प्रमाण मिलाकर अनंत कहा है। अकेले संसार में जो है उसकी बात अगर करेंगे तो वो तो असंख्यात हो जाएगी, चौथे गुणस्थान से लेकर संसारस्थ सम्यक दृष्टि। हाँ, तो उसमें भी व्यक्ति वाले अभिव्यक्ति वाले ऐसा हम करेंगे, परंतु यहां तो सभी जीव लेना है, सिद्धों को भी लिया उसमें। इन दोनों में मौनीय कर्म से युक्त जीवों का ग्रहण करते समय चौथे गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक के जीव ही लेना चाहिए। अतः सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टियों में मौनीय कर्म से युक्त जीव असंख्यात होते हैं तथा मौनीय कर्म से रहित जीव अनंत होते हैं, सिद्धों को उसमें गिनना चाहिए। इस प्रकार परिमाणानुयोग द्वार समाप्त हुआ। परिमाण यानी प्रमाण, उसकी संख्या वो बताइए हम। अब क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का होता है। यहाँ पहले काल अंतर बता चुके, भाव भागा भाग और प्रमाण भी बताया, क्षेत्र की बात अब कर रहे हैं। क्षेत्र यानी कितना क्षेत्र रोकते हैं, यानी वो लोक का कितना भाग है, असंख्यातवाय के संख्यातवाय, इसकी चर्चा यहाँ करेंगे। यहाँ जीवों की इतनी संख्या वो नहीं कहेंगे। मोहनीय विभक्ति वालों का क्षेत्र कितना है, अविभक्ति का कितना है। देखो क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, एक सामान्य ने ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मौनीय विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो कहते हैं सर्वलोक में रहते हैं, पूरे लोक में है ना विभक्ति वाले। अब मौनीय अविभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो कहते लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र में। उसमें अलग अलग विकल्प हो गए, असंख्यात विभाग क्षेत्र में जब कहेंगे तो किसको किसको लेना। हाँ बोलो। हाँ, बारहवे तेरहवे चौदहवे वाले। हाँ वो बाद में करेंगे। और किसको लेना क्या, सिद्धों को कितना छोड़ा, सिद्धों को कितना छोड़ना। जैसे मनुष्य क्षेत्र लिया वैसे उसको भी लेना है, तो वो भी उतना ही है ना, कितना है 45 लाख। हाँ, और वो पूरे लोक का कितना भाग है, असंख्यात भाग, इसलिए उसको पहला विकल्प क्या बताया, लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र में। दूसरा, लोक के असंख्यात बहुभाग क्षेत्र में, ये कहाँ पर होगा, प्रतर समुद्घात वाले केवली। और सर्वलोक में रहते हैं, सर्वलोक में ने पूरा लोक पूर्ण समुद्घात अवस्था में। इसी प्रकार दंड भी वो 13 राजू हो जाता है, वो असंख्यात भाग होगा, क्योंकि 13 राजू भी 14 राजू, 14 में कुछ कम भी हो जाएंगे ना, तो भी उसका जो 12 अंगुल का जो होगा वर्तुलाकार उतना होगा, इसलिए वो तो असंख्यात भागी कहने में आता है। असंख्यात बहुभाग प्रतर में आता है, क्योंकि वहां तो कपाट भी, क्योंकि ऐसा 12 अंगुल है और ऐसा भी पूरा संख्यात भाग नहीं होगा, असंख्यात ही हो जाएगा, ये 12 ही अंगुल है ना। देखो ऐसा 14 राजू, ऐसा 7 राजू भी हुआ और ऐसा 12 अंगुल हुआ। थर्ड डायमेंशन जो है वो 7 राजू नहीं हुई है, या 3.5 राजू भी नहीं हुई है, वो असंख्यात भाग रह गया, तो उससे असंख्यात गुना रह जाएगा। क्या 12 अंगुल होता है स्थित का, स्थित उपविष्ट, ऐसे दो भेद होते हैं उसमें, 12 अंगुल या 36 अंगुल। जैसे कोई जो खड़गासन है तो उसको 12 अंगुल, और ऐसे पद्मासन बैठे हुए तो उसके 3 गुना 36 अंगुल, और 36 अंगुल का फिर उसका गोलाकार करना। आगे पढ़ेंगे। हाँ, इसी प्रकार काय योगी भव्य और वो और हुआ और अनाहारी जीवों के कथन करना चाहिए। क्या कथन करना चाहिए, कि काय योगियों में विभक्ति वाले पूरा क्षेत्र, काय योगियों में और अविभक्ति वाले वैसा ही, तीनों ही विकल्प उसमें हो जाएंगे। भव्यों में भी वही और अनाहारी जीवों में भी ऐसा ही, क्योंकि अनाहारक और अविभक्ति वाले। तो असंख्यातवा भाग यानी वो पहला दंड ले सकते हैं उसमें से। विशेषात वर्तमान निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं, जहां रहते उसकी अपेक्षा से। वह जीवों की स्वस्थान, समुद्घात और उपपाद रूप अवस्थाओं के भेद से तीन प्रकार का होता है। इसके और भेद करेंगे तो कितने हो जाएंगे, दस। दस होते हैं। स्वस्थान में दो, स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान। समुद्घात होते हैं वो सात प्रकार के होते हैं, और एक है उपपाद। उपपाद यानी जन्मने का पहला समय, यह लिखा देखो। स्वस्थान के स्वस्थान स्वस्थान और विहार व स्वस्थान, इस प्रकार दो भेद है। ये सब हमने वो लेशा मार्गणा में पढ़े थे पहले। अभी भी बात हुई थी ना, अभी इतनी फास्ट हुई तो आपको उतना शायद याद नहीं होगा। समुद्घात भी वेदना, कषाय, वैक्रेक, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली के भेद से सात प्रकार का है। यह जीवों की उत्तर भेद रूप इन दस अवस्थाओं में प्रत्येक पद की अपेक्षा क्षेत्र का विचार न करके सामान्य रीति से विचार किया है। यह अवस्था भेद से उसके जो अन्य अन्य विकल्प हो सकते हैं उसको नहीं लेते हुए सामान्यपने कथन करेंगे। अतः जिस स्थान में जिस पद की अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्र की संभावना है उसका ही सामान्य प्ररूपणा में ग्रहण कर लिया गया। क्या कहते हैं सामान्य प्ररूपणा, जैसे कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, तो सत्तर कोड़ाकोड़ी किसकी अपेक्षा कहा, मोनी के मिथ्यात्व की है, दर्शन मोनी के मिथ्यात्व की अपेक्षा कहा, वहां अपेक्षा नहीं बतलाई है, परंतु जहां जो पॉसिबल है उसको ले लिया। अब यहां इतने दस प्रकार है, दस में से जिसमें भी उत्कृष्ट पॉसिबल है उसको वहां कहेंगे। और भेदों की अपेक्षा कहना है तो कहेंगे स्वस्थान तो इतना ही है, परंतु जब विहार करके जाते हैं, मारणांतिक करते हैं, तब पूरा लोक होता है, ऐसी अपेक्षा वहां अलग होगी। परंतु जहां कोई भी जो एप्लीकेशन है मैक्सिमम पॉसिबल उसको सामान्य में कह देंगे। जब हम कर्म की सामान्य स्थिति कहते सत्र कोड़ाकोड़ी, तब वह मोहिनी की अपेक्षा अलग नहीं बताई, पर हम समझ सकते हैं कि वो किसी ना किसी कर्म में वो पॉसिबल है, होता है, इसलिए वो बताया जाता है सामान्य में। ऐसे यहाँ पर ये दस पद जो बताए, दस अलग अलग अपेक्षाएं बताए, उनमें से जहां कोई अधिक से अधिक हो सकता है क्षेत्र, उसको सामान्य में बताएंगे कि इतना क्षेत्र वो रोकता है। तो कहते हैं अतः जिस स्थान में जिस पद की अपेक्षा उत्कृष्ट क्षेत्र की संभावना है, संभावना ने पॉसिबिलिटी, हो सकता है, शक्यता, उसका ही सामान्य प्ररूपणा में ग्रहण कर लिया गया है। मोहनीय विभक्ति वाले जीवों के क्षेत्र का कथन करते समय मिथ्यादृष्टि जीवों की प्रधानता है। विभक्ति वालों में वो तो पूरा लोक व्याप्त है, इसलिए उनकी प्रधानता से बात की, क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीवों का वर्तमान निवास स्थान सर्वलोक है। सासाधन सम्य दृष्टि गुणस्थान से लेकर उपशांत मोह तक के मोहनीय विभक्ति वाले जीवों की प्रधानता नहीं है, क्योंकि उनका वर्तमान निवास स्थान लोक का असंख्यात्वा भाग है। ऐसा क्यों कहा, पंचेंद्रियों का रहने का जो ठिकाना अपना अपना है। मोहनीय अविभक्ति वाले जीवों का क्षेत्र का प्ररूपण करते समय ऊपर तीन प्रकार का क्षेत्र कहा है, उनमें लोक का असंख्यात्वा भाग प्रमाण क्षेत्र, क्षीण मोह, समुद्घात रहित केवली या दंड और कपाट समुद्घात को प्राप्त केवली लिख दिया उन्होंने। कपाट वाले भी असंख्यात्वा भाग है। अयोग केवली और सिद्ध जीवों के क्षेत्र की अपेक्षा कहा है। सिद्धों को भी लिया ना यहाँ पर, वो भी विभक्ति से रहित है, क्योंकि इनका वर्तमान निवास लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में है। लोक का असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र प्रतर समुद्घात की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि प्रतर समुद्घात को प्राप्त केवली ने जगत श्रेणी प्रमाण जगत प्रतरों में से जगत श्रेणी किसको कहते हैं, सात राज्यों को, जगत प्रतर किसको कहते हैं? कितने हुए? कितने हुए? 49 क्या फुट स्क्वायर? हाँ, प्रतर राजू, हाँ 49 प्रतर राजू, जिसको जगत प्रतर कहेंगे, एक प्रतर राजू को जगत प्रतर कहेंगे, या ये 49 स्क्वायर राजू को, प्रतर राजू को जगत प्रतर कहते हैं। तो जगत श्रेणी प्रमाण जगत प्रतरों में से क्या कहते हैं? पूरे लोक में कितने जगत प्रतर हैं? जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय जगत श्रेणी इज इक्वल टू जगत घन यानी लोक। नहीं समझे? सात राजू गुना सात राजू गुना सात राजू तो एक लोक होता है, तो सात राजू गुना सात राजू का जगत प्रतर होता है, तो जगत प्रतर को जगत श्रेणी से गुना करेंगे तो लोक आता है। तो इसमें से जगत श्रेणी प्रमाण जगत प्रतरों में से अभी जो 93,312 ये तो पूर्णांक हुए, और 58,367 बटे 109,760 योजन प्रमाण जगत प्रतरों को घटा देने पर जो लोक का बहुभाग प्रमाण क्षेत्र रहता है, ये किसका होना चाहिए क्षेत्र? वातवलयों का। कौन से वातवलय? कहाँ पे? आउटसाइड के, क्योंकि वातवलय तो बीच में भी होते हैं। कहाँ पर होते हैं? हर एक पृथ्वी के नीचे 60,000 योजनों के होते हैं ना, 20-20-20। अरे पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, आठों ही पृथ्वियों के नीचे 60,000 योजन प्रमाण है। तो यहाँ नीचे के लेने, सबसे नीचे का लेना साइड के लिए, नीचे तो 60,000 योजन है, और जो साइड में जो ऊपर तक चले जाते हैं तो कम होते हैं। पहले में नीचे तो जैसे नीचे एक राजू तक तो 60,000 योजन है, और ऊपर जो है तो 7-5-4 होते हैं, और फिर सेंटर तक मध्य लोक तक 5-4-3 रह जाते हैं, फिर ऊपर ऐसे बढ़ते और कम होते होते, इस तरह से उसका ये प्रमाण है। तो ये जो बाजू के है उनका एक क्षेत्रफल है, ये कैसे निकालना हमने धवला के भाग में दिया, ये आया था ना उसका, वातवलयों का क्षेत्रफल कैसे निकालना, वातवलय बिना पूरा लोक का कैसे निकालना, बहुत सारे विस्तार से देखा था हमने। ये त्रिलोक सार में तो है ही, इसमें भी बहुत हमने देखा था, धवला में भी देखा। इसको घटा देने पर जो लोक का भूभाग प्रमाण क्षेत्र रहता है उससे वर्तमान काल में स्पर्श किया है, यानी वात वलयों का भी इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तथा सर्वलोक क्षेत्र लोक पूर्ण समुद्घात को प्राप्त केवली के वर्तमान निवास की अपेक्षा से कहा है। लोक पूर्ण में वो वात वलयों में भी अंत तक फैल जाते हैं, उनके प्रदेश पूरा लोक व्याप्त होता है। आउटर में नहीं, वात वलयों के जो लास्ट लिमिट है वात वलय के, वहां तक। हाँ, ये जो माइनस किया ना वो वात वलय का क्षेत्र, उसका घनफल कहो। इतने जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय 49 स्क्वायर राजू, इतना वात वलय का, क्योंकि नीचे सात राजू गुना सात राजू और उसकी जो हाइट है 60,000 योजन, वो नीचे लेना है, और फिर साइड में भी हर एक बाजू जो है सात सात की है ना, सात सात राजू और एक राजू हाइट वाली है, और उसमें भी ये घटित करना है। हाँ, वो तो हर एक की जो विड्थ है उसको लेनी पड़ेगी ना, उसके कैलकुलेट कैसे करना, नीचे का तलवे का पहले कैलकुलेट करें, ऊपर का करेंगे, साइड के अलग अलग करेंगे। हाँ देखो, तथा जिन स्थानों की प्रधानता से भोग क्षेत्र का कथन किया है वे स्थान काय योगी भव्य और अनाहारी जीवों के भी पाए जाते हैं, अतः इनका क्षेत्र ओघ क्षेत्र के समान कहा है। जो सामान्य से कहा संख्यात्मक भाग या जो कुछ है वो वैसे जहां पॉसिबल जो है वहां वैसा कहा है। अब आदेश निर्देश की अपेक्षा अलग अलग मार्गणाओं में घटित करेंगे। क्या क्षेत्र की बात चल रही है? नरक गति में नारकियों में मोहनीय विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र में रहते हैं। हमें लगता है अरे पूरा अधोलोक है ना, पूरा अधोलोक नहीं है, अधोलोक में भी भले न पृथ्वियां पूरे ऐसे व्याप्त है एच टू एच, परंतु नारकी तो बीच में त्रस नाली में है, और त्रस नाली में भी बीच बीच में जहाँ उनके बिल है उसी में रहते हैं, बिलों के बाहर तो नहीं रहते हैं। तो उसका क्षेत्र अगर हम कहेंगे देखेंगे तो असंख्यातवा भाग होता है लोक का। इसी प्रकार सभी प्रथमादि सातों नरकों के नारकी, सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच, लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य, सभी देव, सभी विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय लब्ध्य अपर्याप्त, त्रस लब्ध्य अपर्याप्त, बादर पृथ्वीकायिक पर्याप्त, बादर अपकायिक पर्याप्त, क्योंकि पर्याप्त है वो पृथ्वियों के आधार से रहते हैं, अकेले पृथ्वियों का क्षेत्र निकालेंगे तो भी लोक का असंख्यातवा भाग है। इसलिए इन सभी में ये कथन कॉमन होगा, सामान्य, कौन सा? लोक का असंख्यातवा भाग। बादर तेजस कायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पर्याप्त, ये वो प्रतिष्ठित प्रत्येक वाले जो है जिनके आधार से निगोद रहते हैं। वैक्रेक काय योगी, वैक्रेक मिश्र काय योगी, आहारक काय योगी, आहारक मिश्र काय योगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंग ज्ञानी, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, संयता संयत, तेजोलेशा वाले, पद्मलेशा वाले, वेदक सम्य दृष्टि, उपशम सम्य दृष्टि, सासादन सम्य दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र का कथन करना चाहिए। इन सब में यही बात लागू होगी। क्षायिक सम्यक दृष्टियों को क्यों छोड़ा? वो तो लोक पूर्ण में भी चले जाएंगे ना, उनमें तो वो तीनों विकल्प हो गए। ये ऐसे बातें बताई जिसमें असंख्यातवा भाग सिद्ध होता है। विशेषार्थ, ये कोष्ठक कल देखेंगे, अभी क्या देखना चाहते फिर पूछ बताना चाहते देखेंगे जरा। ऊपर कहे गए मार्गणा स्थानों में संभव पदों के दिखलाने के लिए नीचे कोष्ठक दिया जाता है। कोष्ठक यानी उनमें जो ये बातें ना, स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, ये जो अभी हमने देखी है उनमें किसको छोड़ा है इसको इतना देखेंगे, टेबल तो कल देखेंगे। देखो स्वस्थान के दो लिए, वेदना कषाय वैक्रिय लिए, तेजस लिए यानी तेजस समुद्गात, आहारक समुद्गात, मारणांतिक लिया और उपपाद लिया, केवली समुद्गात को छोड़ लिया, क्योंकि ये जो यहाँ हमने देखी थी उसमें कोई केवली की बात यहाँ नहीं, क्योंकि लोक का असंख्यातवा भाग ये सिद्ध करना है। अब ये जो टेबल का अर्थ हम कल देखेंगे, यहीं से शुरू करते टेबल। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई।